नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
तमिलनाडु में हुए एक दुखद हादसे में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस रावत के साथ ही उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। हाई माउंटेन वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट जनरल बिपिन रावत के आर्मी चीफ रहने के दौरान ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। सेना में अपने क्रांतिकारी फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले सीडीएस रावत के अहम योगदान को विस्तार से जानने के लिए बात करते हैं पूनम पांडे से, जो नवभारत टाइम्स की विशेष संवाददाता हैं और रक्षा मामले कवर करती हैं। पूनम, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हुआ ये दुखद हादसा और लेटेस्ट अपडेट्स क्या मिल पाई हैं?
जी, बेहद दुखद और बेहद भयानक ये हादसा बुधवार को दोपहर में हुआ। बुधवार की सुबह सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिल्ली से निकले थे सुलूर के लिए, और सुलूर से उन्हें वेलिंगटन जाना था जहां स्टाफ कॉलेज में उन्हें लेक्चर देना था। बुधवार की सुबह करीब 8:45 में वो यहां से एयरपोर्ट के स्पेशल एयरक्राफ्ट से निकले और करीब 11:30 बजे उन्होंने सुलूर में लैंड किया। वहां से उन्होंने एयरपोर्ट का जो हेलीकॉप्टर है Mi-17B5, इसमें इस हेलीकॉप्टर ने उनके साथ टेक ऑफ किया और जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी थी, उनका स्टाफ था, कुल मिलाकर 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 12:22 पे करीब जानकारी मिली हेलीकॉप्टर की मिसिंग की। दरअसल पायलट जो होते हैं वो लगातार कंट्रोल रूम के संपर्क में रहते हैं, लेकिन 12:22 में उनका संपर्क टूट गया और उसके बाद ये जानकारी आई कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो हेलीकॉप्टर वेलिंगटन पे, जहां उसे पहुंचना था, वहां से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर था जब ये हादसा हुआ, जब वो क्रैश हुआ। कुन्नूर का जो नीलगिरी के जंगल हैं वहां ये हादसा हुआ, वहां ये क्रैश हुआ। और जो लोकल्स ने बताया कि वहां जब हादसा हुआ तो एकदम धुएं का पूरा गुबार था, आग ने पूरी तरह से हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में ले लिया था और देखकर ही ये लग रहा था कि इसमें बचना, अगर कोई बच पाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ये बेहद ही भयानक क्रैश था और बेहद ही दुखद हादसा था।
उनके साथ हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों के बारे में क्या जानकारी मिली है अभी तक?
जी, इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे जनरल बिपिन रावत समेत। 14 में से 13 की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि जो एक ऑफिसर हैं एयरफोर्स के, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो जख्मी हुए हैं, उनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनके साथ जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी की इसमें मौत हुई, उनका स्टाफ था जिसमें एक ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर LS लिंडर थे, उनके स्टाफ में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह थे, उनके साथ हवलदार सतपाल सिंह थे, इनकी भी साथ से में मौत हुई। उसके अलावा उसमें पैरा कमांडो थे, 9 पैरा के नायक गुरुसेवक सिंह थे, 1 पैरा के नायक विवेक कुमार थे, 3 पैरा के नायक जितेंद्र कुमार थे और 1 पैरा के ही लांस नायक BS तेखा भी उसमें सवाल थे। तो 14 में से 13 लोगों को देश ने खोया है इस हादसे में, जबकि एक ऑफिसर का इलाज चल रहा है।
भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये काफी सुरक्षित और दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। वायुसेना के कई महत्वपूर्ण अभियानों का हिस्सा रहा है ये। इसके बारे में कुछ बताएं कि कब से है ये भारतीय वायुसेना में और अत्यधिक सुरक्षित होने के बावजूद कैसे ये हादसे का शिकार हो गया?
जी, Mi-17 ये रशिया का हेलीकॉप्टर है, इसको काफी सेफ माना जाता है क्योंकि ये ट्विन इंजन है और ये हाई अल्टीट्यूड में भी, काफी कॉम्प्लेक्स वेदर में भी ये अच्छे से उड़ान भर सकता है। ट्विन इंजन होने की वजह से ये ज्यादा सेफ है। जब से इंडियन एयरफोर्स में है तब से इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर किया जा रहा है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इंडियन एयरफोर्स के पास Mi-17 के अलग अलग वर्जन के करीब 150 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं। ये हेलीकॉप्टर था Mi-17, ये इसका लेटेस्ट वर्जन था Mi-17V5। और इसकी अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आर हो सकती है। वेदर कंडीशन बहुत खराब हो तब भी ये उड़ान भर सकता है। हालांकि पिछले 9 साल में हम देखें तो Mi-17 के 5 हादसे हो चुके हैं, ये 6ठा हादसा है, और उन 5 में से 2 हार्ड लैंडिंग थी जिसमें कोई फेटल नहीं था और 2 में लोगों की जान गई थी। तो हादसे पहले भी हुए हैं, हालांकि इसको तब भी सेफ माना जाता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट वर्जन था जिसमें CDS सवार थे।
जी, एक दुखद हादसा। लेकिन जनरल रावत की बात करें तो सैन्य अफसरों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिपिन रावत ने LOC, चीन सीमा और नॉर्थ ईस्ट में लंबा वक्त गुजारा है। उन्हें खासतौर पर रक्षा सुधारों के लिए भी जाना जाता है, तो उनके पहले CDS बनने तक के इस गौरवपूर्ण सफर के बारे में कुछ बताएं।
जी, जनरल रावत थर्ड जनरेशन आर्मी अफसर थे। उनके दादा आर्मी में रहे थे, उनके पापा लेफ्टिनेंट जनरल रहे, तो ये थर्ड जनरेशन के ऑफिसर थे। और अगर हम उनका करियर देखें आर्मी में, तो जब NDA में 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जब वो IMA गए, तो IMA में भी वो काफी ब्रिलियंट रहे। वहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर मिला, जिसको बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है। और 1978 में वो आर्मी में कमीशन हुए, गोरखा राइफल्स में वो कमीशन हुए, वो गोरखा ऑफिसर रहे। और उनके कई अहम पोस्टिंग में वो रहे। नॉर्थ ईस्ट में वो कोर कमांडर रहे, और RR में यानी कश्मीर का भी उन्हें बड़ा अनुभव रहा। और उनको अगर हम बात करें स्टाफ पोस्टिंग की, उसमें भी उनका काफी अनुभव रहा। और जैसा कि आपने खुद बताया कि वो हाई माउंटेन वॉरफेयर के एक्सपर्ट माने जाते थे, काउंटर इंसर्जेंसी के वो एक्सपर्ट माने जाते थे। और जब वो आर्मी चीफ बने थे, उससे पहले जब वो वाइस चीफ थे, उस समय पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी घटना के बाद, उस समय वो वाइस चीफ थे। और उससे पहले 2015 में जिस समय वो नॉर्थ ईस्ट में कोर कमांडर थे, आपको याद होगा कि वो एक तरीके से पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी जो बॉर्डर पार कर की गई थी। वो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों पर थी जो बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार भाग गए थे। और उससे पहले उन उग्रवादियों ने भारतीय सेना पे हमला किया था, जिसमें 18 सैनिक शहीद हो गए थे। एम्बुश था वो, घात लगा के हमला था, जिस पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय सेना की 21 पैरा ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी बॉर्डर क्रॉस कर। और इससे सूत्रधार जनरल रावत ही थे, क्योंकि वो उस समय वहां के कोर कमांडर थे। अभी जो 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें बालाकोट में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया, उस समय जनरल रावत आर्मी चीफ थे। और उनके बारे में हमेशा ये कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पोस्ट, उन्होंने इन्फेंट्री बटालियन लीड की, उसके अलावा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक का उनके पास काफी अनुभव रहा है। अगर उनका हम एकेडमी की बात करें, तो वो मीडिया, काफी मीडिया फ्रेंडली थे, और इसलिए मीडिया के लिए भी एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें आर्मी में बहुत से ऑफिसर, या पहले हम आर्मी में देखें कि बात करने से घबराते थे, लेकिन जनरल रावत ने एक तरीके से आर्मी को ओपन किया। वो बातचीत से कभी नहीं हिचकते थे, और इसकी एक ये भी है कि वो खुद भी अलग अलग सब्जेक्ट पर आजकल लिखते रहते थे। उनका ज्यादा रिफॉर्म पे उनका फोकस था, और उनकी जो PhD थी वो मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटजिक स्टडीज थी, तो शायद इसलिए भी मीडिया से बात करने में वो खुलकर बात करते थे। और रिफॉर्म की, जैसे आपने पूछा मुझसे रिफॉर्म में, उनके बारे में अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, जब वो चीफ थे तब भी उनके कई फैसलों पे सवाल उठाए जाते रहे। जब वो आर्मी चीफ थे, वेटरन्स कई फैसलों पे सवाल उठाते रहे, लेकिन वो कभी उन चीज से घबराए नहीं। उनका हमेशा ये मानना था कि अगर रिफॉर्म लाना है तो कहीं ना कहीं से विरोध होगा। इस तरीके से करप्शन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो छोटा से छोटा करप्शन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, चाहे आर्मी कैंटीन की बात हो या आर्मी ऑफिसर्स का गेस्ट हाउस छोड़ के होटल में रुकने की बात हो। तो कई मामलों में उन्होंने काफी चेंजेस किया, और उनका फोकस इस पर भी रहता था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन को किस तरीके से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके, ताकि युवा उसमें आए। थिएटर कमांड का काम अभी वो देख रहे थे, बीइंग अ CDS की एक अहम जिम्मेदारी थी थिएटर कमांड बनाने की। थिएटर कमांड बेसिकली पूरी सेना को मिला के, आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सब की, जो अभी 17 कमांड है, वो सब मिला के 4 थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर कई तरीके की बातचीत भी हुई, कई ऐतराज भी हुए। तो जनरल रावत इन सब पे काम कर रहे थे कि जो भी उससे रास्ते की बाधाएं हैं थिएटर कमांड की, वो दूर की जा सकें, इसको सहमति बना सकें। स्वदेशी को लेकर उनका बहुत बड़ा जोर था। वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में, क्योंकि CDS के जिम्मे तीनों ही सेनाएं, इंटीग्रेशन का काम उनका था। वो चाहते थे कि फौज में इस तरीके से स्वदेशी को बढ़ावा मिले। मॉडर्नाइजेशन पे उन्होंने काफी काम किया था, और उनका ये हमेशा फोकस रहता था कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजी पे उनका पूरा जोर रहता था। उनका हमेशा ये कहना होता था कि क्योंकि जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होगा, और जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे होगा वही वो अवार्ड जीतेगा।
जी, आपने उनके बड़े और सफल सैन्य अभियानों की बात की, तो अब जब चीन के साथ लंबे समय से ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर तनाव बना हुआ है, तो सीडीएस रावत के जाने का इससे बुरा समय नहीं हो सकता था, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी नेतृत्व क्षमता का कोई मुकाबला नहीं था।
जी, उनकी ग्राउंड की समझ से लेकर रणनीति बनाने की क्षमता, उसका हमेशा जिक्र किया जाता है। और ऐसे वक्त में जब एलएसी पर तनाव है, ईस्टर्न लद्दाख में तनाव शुरू हुआ था, एलएसी पर एक साल हो गया लेकिन तनाव अभी दूर नहीं हुआ है, बरकरार हुआ है, ऐसे वक्त में सीडीएस का जाना एक बहुत बड़ा झटका तो है ही।
जी, अब जबकि वो पहले सीडीएस थे देश के, अगला सीडीएस अब कौन हो सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है और कब तक तय हो सकता है?
अभी इसके बारे में सटीक जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल है। बुधवार को शाम को ही सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, और अगर हम अभी देखें तो सीनियर मोस्ट जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, और उनका टेन्योर भी अगले साल अप्रैल में पूरा हो रहा है, तो हो सकता है कि उनको ये मौका मिले। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी बातचीत चल रही है कि हो सकता है उन्हें मौका मिले, क्योंकि नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ अभी ही बदले हैं, नए चीफ मिले हैं नेवी को और एयरफोर्स को, और जनरल नरवणे सीनियर मोस्ट भी, और उनका टेन्योर भी अप्रैल में पूरा हो रहा है, तो हो सकता है उनके नाम पर विचार किया जाए।
जी पूनम, विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।